नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। मेधावी पुरुष उद्योग अप्रमाद संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे चार प्रकार के क्लेशों की बाढ़ आप्लावित न कर सके। धम्मपद गाथा 25। चूल पंथक की कथा। हमने कई बार इंगित किया है कि हमारी काम करने की क्षमता तथा हमारी प्रगति की गति इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अतीत में कितनी तैयारी की है। हमने ऐसे साधकों की कथा सुनाई है जो अति शीघ्र प्रगति करने में सफल हुए। अब मैं आपको एक मंद व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ। यहाँ तक कि मंद गति से सीखने वाला व्यक्ति भी यदि ठीक से कार्य करता है तो धर्म की शिक्षा के पालन का अभ्यास कर सकता है तथा लक्ष्य तक पहुँच सकता है। जिस गाथा से हमने प्रारंभ किया है वह गाथा चूल पंथक के संदर्भ में ली गई थी। राजगृह पाली में राजगह या आधुनिक राजगृह में एक धनवान व्यापारी थे जिनकी एक बेटी थी। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने उसको रहने के लिए एक सात मंजिला अट्टालिका का निर्माण करवाया तथा उसे उसमें कड़े पहरे में रखा, किंतु वह अपने दास की ओर आकर्षित हो गई तथा इस संबंध का पता चल जाने के भय से वह बोली, हमारे लिए अब यहाँ रह पाना असंभव है। यदि मेरे माता पिता को पता चल गया तो वे मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमें कहीं और जाकर रहना चाहिए। अतः वे वहाँ से चले गए। वह गर्भवती हो गई तथा जब जन्म निकट आ गया तो अपने पति से बोली, मेरा समय निकट आ गया है, तथा बिना किसी मित्र या संबंधी की सहायता से जन्म देना कठिनाई मोल लेना है। हमें मेरे माता पिता के घर चलना चाहिए। किंतु दास अपने जीवन के लिए भयभीत था, अतः वह उसे टालता रहा। उसने सोचा, यह मूर्ख अपने किए की गंभीरता के कारण वहाँ जाने का साहस नहीं कर पा रहा है, किंतु वास्तव में माता पिता अपने बच्चों के कल्याण की परवाह करते हैं। मैं जाऊँगी चाहे वह आए या नहीं। तो वह चल पड़ी। जब पति घर आया और पाया कि वह चली गई है तो वह उसके पीछे गया। वह उसको रास्ते में मिली तथा उसने उसी स्थान पर जन्म दिया। अब अपने माता पिता के घर जाना जारी रखने का कोई अर्थ नहीं था, अतः वे वापस आ गए तथा उन्होंने बालक का नाम पंथक अर्थात सड़क का रखा। फिर वही बात शीघ्र ही एक बार पुनः हुई तो उन्होंने बड़े बालक के नाम में महा अर्थात बड़ा जोड़ दिया तथा दूसरे बालक का नाम चूल पंथक यानी सड़क का छोटा रखा। ज्येष्ठ बालक ने अपने साथियों के साथ खेलते हुए उनको अपने मामाओं तथा नाना नानियों के विषय में बात करते हुए सुना तो उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या गांव में अपने कोई सगी संबंधी नहीं है। उसकी माँ ने कहा, हाँ यहाँ तो नहीं, किंतु राजगह में तुम्हारे नाना एक धनी व्यापारी हैं तथा वहाँ हमारे अनेक संबंधी हैं। तो बालक ने कहा कि वह वहाँ जाना चाहता है। माँ ने अपने पुत्र को यह नहीं बताया कि उसने अपना घर क्यों छोड़ दिया था। अंत में दोनों बालकों ने अपनी माँ को इतना तंग किया कि उसने अपने पति से कहा, ये बालक मुझे कितना सता रहे हैं, आखिरकार मेरे माता पिता जब हमें देखेंगे तो हमें जिंदा नहीं खा जाएंगे, हमें इन बच्चों को लेकर इनके नाना नानी को देखने चलना चाहिए। पति ने कहा, मैं उनका सामना नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तो वे बच्चों के साथ आ गए तथा राजगह के नगर द्वार पर एक विश्राम गृह में रुके। माँ ने अपने माता पिता को एक संदेश भिजवाया। उनकी प्रतिक्रिया थी, पुनर्जन्मों के इस चक्र में ऐसा कोई नहीं है जो कभी पुत्र या पुत्री न हुआ हो, किंतु हमारी इस पुत्री ने तथा इस दास ने हमें बहुत आहत किया है। हमारे लिए उन्हें देख पाना असंभव है। हम उन्हें जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन दे देते हैं तथा वे जहाँ चाहें वहाँ जाकर रह सकते हैं, परंतु वे बालकों को हमारे पास भेज सकते हैं। अतः बालक अपने नाना नानी के साथ रहने आ गए। महापंथक इतने बड़े हो गए थे कि वे अपने नाना नानी के साथ बुद्ध के प्रवचन सुनने जाते, किंतु चूल पंथक अभी छोटे थे। महापंथक में नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनते सुनते भिक्षु बनने की प्रवृत्ति विकसित हुई तथा उन्होंने अपने नाना की अनुमति मांगी। उनके नाना आह्लादित हो गए। उन्होंने कहा, विश्व में किसी और के बजाय मैं चाहता हूं कि तुम ही भिक्षु बनो। यदि तुम भिक्षु बन सकते हो तो बनो। ऐसा है कि किसी की भिक्षु बनने में सहायता करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। यदि हम स्वयं भिक्षु बनते हैं या ऐसा करने के लिए किसी और की सहायता करते हैं तो हम अगले जीवन में प्रज्ञा प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। तो महापंथक एक श्रामणेर, पाली में सामनेर बन गए। उनके आचार्य ने उन्हें ध्यान लगाने की 40 तकनीकों में से एक तकनीक सिखाई, जिसमें सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, दांत और त्वचा पर मनन सम्मिलित है। इस प्रकार का ध्यान भिक्षुओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है तथा महापंथक बुद्ध की अनेक शिक्षाओं में दक्ष हो गए एवं जब उनकी पर्याप्त आयु हुई तो उन्होंने उपसंपदा अर्थात पूर्ण भिक्षु के रूप में दीक्षा प्राप्त की। तो वह फल पद को प्राप्त कर उसके आनंद में डूबे रहने लगे तथा उन्होंने सोचा, क्या चूल पंथक को यह आनंद देना संभव नहीं होगा। तो वह अपने नाना के पास गए तथा चूल पंथक के भिक्षु संघ में प्रवेश के लिए उनकी अनुमति मांगी। अनुमति मिल गई। इतनी सरलता से कोषाध्यक्ष के अनुमति देने का एक कारण यह था कि वे बुद्ध के एक प्रसिद्ध गृहस्थ शिष्य थे तथा जब लोग यह पूछते थे कि उनके पौत्रों की माँ कौन है तो अपनी पुत्री के अनैतिक कार्य के विषय में समझाने में उन्हें शर्म आती थी। चूल पंथक नैतिकता के नियमों के अभ्यास में स्थापित हो गए थे, किंतु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति मंद थी। उन्हें केवल 4 पंक्तियों की एक गाथा दी गई थी, पद्मम यथा कोकनदम सुगंधम, पातोसिया फुल्लमवीत गंधम अंगीरसम पस्य विरोचमानम तपंत मादिच्य निवंत लिखे। अर्थात देदीप्यमान प्रताप के भगवान बुद्ध का ध्यान पूर्वक अवलोकन करो, जैसे कोई सुगंधित लाल कमल प्रातः काल खिल उठा हो तथा आकाश में सूर्य चमकता हो। किंतु वे चार पंक्तियां भी याद नहीं कर सके। निसंदेह इसके पीछे एक कारण था। गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती काश्यप बुद्ध के समय वे एक भिक्षु थे। उस जन्म में वे अत्यंत बुद्धिमान थे तथा उन्होंने एक मंद गति से प्रगति करने वाले बुद्ध का उपहास किया था। दूसरे भिक्षु ने, जो अपने उपहास के कारण लज्जित थे, अपना पाठ सीखने से इनकार कर दिया था। तो इसी कारण चूल पंथक इस जन्म में मंद हुए। जब वे आगे सीखते तो जो पहले सीखे थे वह भूल जाता था। चार महीने बीत गए किंतु वे एक भी छंद नहीं सीख पाए। तो महापंथक उनके पास गए और बोले, तुम इस संघ में बने रहने के योग्य नहीं हो। तुम भिक्षु जीवन के लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हो यदि तुम चार पंक्तियां भी याद नहीं कर सकते? तुम्हें अब यहां से विदा ले लेनी चाहिए। किंतु चूल पंथक एक साधारण व्यक्ति का जीवन व्यतीत करने के आकांक्षी कभी नहीं थे। वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत जुड़े हुए थे। तो उसी समय जीवक नामक एक गृहस्थ चिकित्सक ने, जो राजकुमार के एक पालक पुत्र थे, भगवान बुद्ध एवं उनके साथ रहने वाले 500 भिक्षुओं को भोजन पर आने के लिए आमंत्रित किया। महापंथक इस प्रकार के निमंत्रणों की व्यवस्था करने के प्रभारी थे। उन्होंने यह कहते हुए स्वीकार किया, एक भिक्षु चूल पंथक है जो मंद बुद्धि का है। वह धम्म में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके अतिरिक्त मैं अन्य सभी के लिए आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। जब चूल पंथक ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, स्थविर मुझसे अवश्य निराश होंगे, तो भिक्षु संघ में रहने से क्या लाभ। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं पुनः गृहस्थ बन जाऊं तथा दान पुण्य करते हुए जीवन यापन करूं। तो दूसरे दिन भोर में ही वे चीवर उतारने के लिए तैयार हो गए। भगवान बुद्ध सदैव प्रातःकाल विश्व का सर्वेक्षण करते थे, यह देखने के लिए कि उनकी शिक्षा से लाभान्वित होने के लिए कौन तैयार है, तथा जो हो रहा था उसका उनको पता चला। वे वहां आए तथा चूल पंथक जिस द्वार से निकलकर विदा लेने वाले थे उस द्वार के इस पार ही टहलने लगे। बुद्ध को देखकर चूल पंथक ने उनका अभिवादन किया। बुद्ध ने पूछा, दिन के इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? चूल पंथक ने उत्तर दिया, बंदे, मेरे भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया है, मैं संघ को छोड़कर जा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा संघ में प्रवेश मेरे चिंतन का विषय है? तो जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें विदा कर दिया तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? वापस गृहस्थ जीवन में लौटने में क्या अच्छाई है? आओ मेरे साथ चलो। तो शिक्षक अपनी शुभ चिन्हों से अंकित हथेली से चूल पंथक का सिर थपथपाकर उसे अपने साथ ले गए तथा गंध कुटी के समक्ष बैठा दिया। फिर उसे एक स्वच्छ पिलोतिक अर्थात वस्त्र का टुकड़ा दिया तथा बोले, चूल पंथक, पूर्वाभिमुखी होकर यहाँ बैठो तथा रजोहरणम रजोहरणम अर्थात अशुद्धता हरण करते हुए बारंबार कहते कहते इस वस्त्र को रगड़ते रहो। जैसे जैसे चूल पंथक रजोहरणम रजोहरणम कहते हुए वस्त्र के टुकड़े को रगड़ने लगे तो वह मैला होता गया। तो उन्होंने सोचा यह पिलुतिक अत्यंत स्वच्छ था किंतु मेरे कारण बदल गया तथा दूषित हो गया। बुद्ध ने जो जीवक के घर भोजन के लिए गए थे महसूस किया कि चूल पंथक ने यह मनन करते हुए कि सभी अनुबद्धित वस्तुएं नश्वर हैं अपना मन अंतर्दृष्टि पर स्थापित कर लिया है, अतः उन्होंने स्वयं का एक प्रतिबिंब वहां भेजा तथा चूल पंथक से कहा, केवल यह पिलोतिक ही नहीं है जो धूल से दूषित हुआ है, तुम्हारे भीतर राग द्वेष तथा मोह की धूल विद्यमान है, उन्हें निकालो तथा उसे एक गाथा के रूप में दोहराया। रागो रजो नचपन रेणु विच्यति रागस्य तम अधिवचनम रजोति एतम रज्जम विपज हित्व भिक्खवो विहरन्ति ते विगत रजस्य शासने। राग को रज कहा जाता है, इसका अर्थ धूल नहीं है, इसका अर्थ है वासना। इस वासना की धूल का त्याग कर भिक्खु उनकी शिक्षा का पालन करता है जिन्होंने वासना से मुक्ति प्राप्त कर ली है। 200 रजो नचपन रेण उच्चति दोषस्येतम अधिवचनम रजोति एतम रजम विपज हित्व भिक्खवे विहरन्ति ते विगत रजस्य शासने। द्वेष पाली में दोष को रज कहा जाता है, इसका अर्थ धूल नहीं है, इसका अर्थ है द्वेष। इस द्वेष की धूल का त्याग कर भिक्खु उनकी शिक्षा का पालन करता है जिन्होंने द्वेष से मुक्ति प्राप्त कर ली है। मोहो रजो नचपन रेणु उच्यति मोहस्येतम अधिवचनम रजोति एतम रजम विपजहित्व भिक्खवो विहरन्ति ते विगत रजस्य शासने। अज्ञान या मोह को रज कहा जाता है, इसका अर्थ धूल नहीं है, इसका अर्थ है मोह। इस मोह की धूल का त्याग कर भिक्खु उनकी शिक्षा का पालन करता है जिन्होंने मोह से मुक्ति प्राप्त कर ली है। गाथा के अंत में चूल पंथक ने विश्लेषणात्मक ज्ञान के साथ अर्हत्व प्राप्त किया तथा वे उसके द्वारा सभी शिक्षाओं अर्थात त्रिपिटक पाली में त्रिपिटक के आशय समझ गए। जब जीवक बुद्ध के लिए दान के प्रतीक के रूप में उड़ेलने हेतु जल लाए तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या विहार में अभी भी भिक्खु हैं? जब जीवक ने उत्तर दिया कि महापंथक ने कहा है कि अब कोई भी पीछे नहीं छूटा है तो बुद्ध ने उन्हें बताया कि वहां हैं। तो जीवक ने वहां किसी को देखने के लिए भेजा। चूल पंथक को अपने भाई की कही बात याद आ गई, अतः उन्होंने 1000 भिक्खुओं की रचना कर आम के बगीचे को उनसे भर दिया। कुछ चीवरों की मरम्मत कर रहे थे, कुछ उनकी रंगाई अन्य अध्ययन इत्यादि। जीवक द्वारा भेजा गया व्यक्ति लौट आया तथा बोला, आम का बगीचा तो भिक्खुओं से भरा पड़ा है। बुद्ध ने कहा, विहार में जाओ तथा घोषणा करो कि तथागत ने चूल पंथक नामक भिक्खु को बुलाया है। किंतु वह व्यक्ति वापस आकर बोला कि सभी 1000 भिक्खुओं द्वारा घोषित करती हुई ध्वनियां आ रही थी, मैं ही चूल पंथक हूं। तो बुद्ध ने कहा, जाओ, सबसे पहले जो भिक्खु बोले कि वह चूल पंथक है उसको पकड़ लो तो शेष लुप्त हो जाएंगे। तथा ऐसा ही हुआ। अतः चूल पंथक भी अन्य लोगों के साथ सम्मिलित हो गए। भोजन के पश्चात बुद्ध ने जीवक से कहा कि कि ऐसे अवसरों पर प्रायः दिया जाने वाला प्रवचन चूलपंथक देंगे, तथा चूलपंथक ने एक ऐसा प्रवचन दिया जिसमें समस्त शिक्षा अर्थात त्रिपिटक समाविष्ट था। संध्या काल में भिक्षुओं के एक वर्ग में उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी चर्चा चल रही थी। बुद्ध उनके पास गए तथा अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठे। उन्होंने मेत्तापूर्ण कोमल हृदय से सभा को देखा तथा सोचा, इस सभा का व्यवहार इतना सुखद है कि हाथ या पैर की कोई गतिविधि नहीं, किसी की खांसी या छींक नहीं। वे बुद्ध के लिए सम्मान से इतने भरे पड़े हैं तथा उनके गौरव से इतने विस्मयाकुल हैं कि यदि मैं यहाँ जीवन पर्यंत मौन बैठा रहूं, तो वे पहले बात करके मौन भंग नहीं करेंगे, तो मैं ही वार्तालाप प्रारंभ करूंगा। तथा उन्होंने पूछा कि क्या चर्चा चल रही थी। उन्होंने उनको बताया तथा बुद्ध ने कहा कि यह पहली बार नहीं था कि चूलपंथक को उन्होंने आश्रय प्रदान किया था। मन की शांति। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है तो वह दृढ़ एवं शांत हो जाता है। मन की शांति से कुछ मानसिक संकेत प्रकट होते हैं। ऐसे संकेत इसलिए उदय होते हैं क्योंकि मन अस्थायी रूप से शुद्ध हो चुका होता है। वे व्यक्ति की पारमिताओं के आधार पर तथा उसके प्रयास में संतुलन के आधार पर देर सवेर कभी न कभी अवश्य उदय होंगे। हमें कैसे काम करना चाहिए, आचार्य बुद्ध घोष ने इसका वर्णन विशुद्धि मार्ग में किया है। आपका मन श्वास के संज्ञान पर नहीं रहना चाहता, वह एक जंगली बैल के रथ की तरह पथ से भटक जाता है। अब मान लीजिए कि एक ग्वाला किसी जंगली गाय के दूध पर पले एक जंगली बछड़े को पालतू बनाना चाहता है, तो वह बछड़े को गाय से दूर अकेले रहने के लिए उसे जमीन में गड़े एक मोटे खूंटे में रस्सी से बांध देगा। हो सकता है कि बछड़ा अपने आप को तुड़ाने का तथा इधर उधर भागने का प्रयास करे, किंतु जब उसे लगेगा कि वह अब दूर नहीं जा सकता तो अंततः वह शांत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो मन जो दृष्टि ध्वनि गंध स्वाद स्पर्श तथा विचारों के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के विषय रूपी भोजन एवं पेय पर पला है, उसे आपको इन विषयों से अलग कर देना चाहिए। साधना में ऐसी प्रगति के पश्चात अपने मन को सत्य की रस्सी से आश्वास एवं प्रश्वास के खूंटे में बांध सकते हैं। आपका मन अतीत में जिन विषयों पर ध्यान देने का आदि हो गया था उनसे वंचित हो जाने पर इधर उधर भागेगा, किंतु सत्य की सुदृढ़ रस्सी की सहायता से वह ध्यान के आलंबन पर स्थिर होने लगेगा तथा उपचार समाधि एवं अर्पणा समाधि या ध्यान का प्रभाव आपकी सहायता करेगा। आचार्य बुद्ध घोष के अनुसार जब साधक समुचित रूप से कार्य करेगा तो उसे निमित्त अर्थात संकेत प्रकट होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निमित्त सब में एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों में यह सेमर की रुई के या मंद समीर के सुखद स्पर्श जैसा होता है। आचार्य बुद्ध घोष ने अपनी टीकाओं में इंगित किया है कि यह निमित्त कुछ लोगों में तारे के समान या मणियों या मोतियों की लड़ी के समान होता है। अन्य लोगों में कठोर स्पर्श के रूप में कपास के बीज या लकड़ी को छीलकर बनाई गई खूंटी के स्पर्श के समान होता है। कुछ लोगों को निमित्त का अनुभव ऐसा होता है जैसे कोई सिकड़ी या श्रृंखला, फूल की माला या धूम शिखा हो। अन्य लोगों को फैले हुए मकड़ी के जाले, बादलों की परत, कमल के फूल, रथ के पहिए या चंद्रमा अथवा सूर्य के बिंब के समान जान पड़ता है। आचार्य बुद्ध घोष ने स्पष्ट किया कि नाना प्रकार के निमित्त उसी तरह है जैसे अनेक भिक्षु एक साथ बैठकर भगवान बुद्ध के प्रवचनों का पाठ कर रहे हों। जब एक भिक्षु पूछते हैं, आप क्या सोचते हैं, यह प्रवचन कैसा लगता है, तो कोई भिक्षु कहेंगे, मुझे तो यह विशाल पहाड़ी नदी सा जान पड़ता है। कोई दूसरे भिक्षु कहेंगे, मेरे लिए यह वन में वृक्ष पंक्ति के समान है। फिर कोई अन्य भिक्षु कहेंगे, मेरे लिए यह शीतल छांव देते हुए फलों से भरे वृक्षों के विस्तार के समान है। वही सूत्र भिन्न भिन्न रूप में इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसकी संज्ञा या संज्ञान उनके लिए भिन्न भिन्न है। निमित्त भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होंगे क्योंकि उनके संज्ञान भिन्न भिन्न है। आचार्य बुद्ध घोष ने कहा है कि कर्मस्थान या निमित्त का जन्म संज्ञा से होता है, इसका स्रोत संज्ञा है, यह संज्ञा द्वारा निर्मित है। अतः यह समझना चाहिए कि जब यह लोगों में अलग अलग तरह से प्रतीत होता है तो यह उनके संज्ञान में अंतर के कारण है। आश्वास को आलंबन बनाने वाला चित्त और है, प्रश्वास को आलंबन बनाने वाला चित्त कोई और, तथा निमित्त को आलंबन बनाने वाला चित्त कोई और ही है। जिस साधक को ये तीनों धर्म स्पष्ट नहीं होते वह न तो उपचार समाधि तक और न ही पूर्ण अर्पणा समाधि या ध्यान तक पहुंच पाता है। जब सभी तीनों का स्पष्ट बोध हो तो उपचार समाधि तक तथा अर्पणा समाधि तक पहुंचना संभव हो जाता है। तथा आचार्य बुद्ध घोष निम्नलिखित गाथा उद्धृत करते हैं। निमित्तम अस्सास पस्सासा अनारम्मणमेक चित्तस्य अजानतो चतयोधम्मे भावना नुपलब्धति। निमित्त, आश्वास तथा प्रश्वास ये तीनों एक ही चित्त के आलंबन नहीं है। जिसे इन तीनों बातों का बोध नहीं है उसे विकास नहीं प्राप्त होता। निमित्तम अस्सास पस्सासा अनारम्मण मेक चित्तस्य जानतो चतयोधम्मे भावना उपलब्धति। निमित्त, आश्वास तथा प्रश्वास ये तीनों एक ही चित्त के आलंबन नहीं है। जिसे इन तीनों बातों का बोध है उसे भावना अर्थात विकास प्राप्त होता है। आदरणीय वेबू सयादो का परामर्श। अनेक बार जब हमें मन को नियंत्रित कर पाना कठिन होता है तो मन में अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं। हमारे मन में आ सकता है कि यह साधना हमारे लिए लाभकारी नहीं लगती या हम इसे ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। आदरणीय वेबू सयादो ने अपने एक प्रवचन में शिष्यों को निम्न प्रोत्साहन दिया। आपने सील या सदाचार के लिए एक शिक्षा पद लिए हैं। अब चूंकि आपने सील की पारमी को पूर्ण करने का संकल्प लिया है तो इसे अधिकतम रूप से पूरा कीजिए। केवल जब ही आप सील को अधिकतम रूप से पूरा करेंगे तब ही आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। आप वर्तमान में एवं भविष्य में सुखी होंगे। केवल बुद्ध की शिक्षा ही आपको वर्तमान में तथा शेष सतत अस्तित्व अर्थात संसार में वास्तविक आनंद दे सकती है। बुद्ध की शिक्षा त्रिपिटक तीन ग्रंथ संग्रहों में निहित है। त्रिपिटक अत्यंत व्यापक है। यदि हम त्रिपिटक का सारांश निकालें तो हमें जागृत के 37 घटक बोधिपक्षीय, पाली में बोधिपक्षीय धम्म मिलेंगे। जागृत के 37 घटकों का सार अष्टांगिक आर्य मार्ग मद्गांग है। अष्टांगिक आर्य मार्ग का सार तीनों प्रशिक्षण, पाली में शिक्षा, अर्थात उच्च नैतिकता, उच्च सती तथा उच्च प्रज्ञा, अधिशील, अधिचित, अधिपहिया हैं। तीनों प्रशिक्षणों का सार अद्वितीय सार्वभौमिक विधान एको धम्मो है। यदि आपका शरीर और मन नियंत्रण में है, जैसा कि इस समय है, तो शारीरिक या वाचिक कार्यों में कोई खुरदरापन नहीं हो सकता। यही अधिशील या परिपूर्ण नैतिकता है। जब अधिशील सशक्त हो जाता है तो मन शांत एवं स्थिर हो जाएगा तथा अपनी कठोरता को खो देगा। यही अधिचित्त कहलाता है। यदि अधिचित्त या समाधि सशक्त हो जाती है तथा मन एक लंबी अवधि तक एकाग्र रहता है तो आप अनुभव करेंगे कि एक ही क्षण में पदार्थ अरबों अरबों बार उदय होता एवं नष्ट होता है। यदि मन अर्थात नाम पदार्थ अर्थात रूप को जानता है तो यह भी जानता है कि पलक के एक बार झपकने के भीतर ही पदार्थ अरबों बार उत्पन्न एवं विखंडित होता है। इस उदय एवं विघटन के ज्ञान को अधिपहिया कहा जाता है। जब भी हम श्वास अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो आन एवं अपान अर्थात आश्वास एवं प्रश्वास नाक में या नासिका रंध्रों के पास किसी स्थान पर स्पर्श करते हैं। संवेदनशील पदार्थ, पाली में काय पासाद, हवा के स्पर्श को पंजीकृत करता है। इस प्रक्रिया में स्पर्श होने वाला तत्व पदार्थ है तथा स्पर्श को जानने वाली इकाई मन है। अतः बाहर जाकर चारों ओर दूसरों से मन तथा पदार्थ के बारे में मत पूछिए। अपनी श्वास का अवलोकन कीजिए और उनके बारे में आपको अपने आप पता लग जाएगा। जब हवा अंदर आती है तो स्पर्श करेगी, जब हवा बाहर जाती है तो स्पर्श करेगी। यदि आप इस स्पर्श को निरंतर जानते रहें तो इच्छा या लोभ, दुर्भावना या द्वेष तथा भ्रम या मोह के उदय होने का अवसर ही नहीं आएगा तथा लोभ, क्रोध एवं भ्रम की अग्नि क्षीण होती जाएगी। वास्तव में वायु के स्पर्श के पहले आपको उसका पता नहीं चल सकता, उसके चले जाने के बाद उसका पता नहीं चल सकता। केवल उसी समय जब हवा अंदर या बाहर जाती है आप उसके स्पर्श की अनुभूति कर सकते हैं। इसे हम वर्तमान क्षण कहते हैं। जब हम वायु का स्पर्श अनुभव करते हैं तब हम जानते हैं कि वहाँ केवल मन एवं पदार्थ हैं। हम स्वयं जानते हैं कि यहाँ न मैं, न कोई अन्य व्यक्ति, न कोई पुरुष या स्त्री है तथा हम स्वयं समझ जाते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने कहा है वह वास्तव में सत्य है। हमें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम आश्वास एवं प्रश्वास का संज्ञान लेते रहते हैं वहाँ कोई मैं या आत्मा नहीं होती। जब हम यह जानते हैं तो हमारी दृष्टि शुद्ध होती है। यही सही दृष्टि है। उस पल में हम जानते हैं कि नाम एवं रूप अर्थात मन एवं पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि मन एवं पदार्थ दोनों अलग अलग हैं। हम यदि इस प्रकार नाम एवं रूप के बीच भेद कर सके तो हम नाम एवं रूप में भेद करने में सक्षम हो जाते हैं। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। जब जब वायु का स्पर्श होता है यदि हम तब तब उसे जानते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है तथा हमें उसका लाभ मिलता है। यह मत सोचिए कि एक पल में भी जो लाभ मिलेगा वह कम है। यह मत सोचिए कि जो लोग ध्यान लगाते हैं उन्हें अपने अभ्यास से कोई लाभ नहीं मिलता। अब जबकि आपका एक आनंदमय लोक में जन्म हुआ है तथा आप किसी बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आ चुके हैं तो आपको अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। भोजन एवं पेय के विषय में चिंता न करें, किंतु जितना संभव हो उतना प्रयास करें। आज प्रभात मात्र इतना ही। भवतु सब मंगलम, रक्खन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रक्खन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रक्खन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।